अपना राष्ट्र है ये कहने का साहस बड़े बड़े फैलाने वाले में नहीं, और एक मिला जुला ऐसा नया एक विश्व राष्ट्र जीवन बनाने का प्रयत्न किया जिसमें कि यहाँ का निवासी हिंदू उसका विनाश करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करने वाला ऐसे जो कुछ बाकी के समाज में वो सब इनको समान रूप से ही जिसका अंग माना।
ये आवाज है माधव सदाशिव गोलवलकर की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के बाद 43 सालों तक आरएसएस की अगुवाई की और उसे उथल पुथल के दौर और तमाम विवादों से निकालते हुए उस मुकाम पर पहुंचाया जहां हम आज उसे देखते हैं। 2004 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के जाने माने विचारक एमजी वैद्य ने लिखा था, गुरु गोलवलकर को 20वीं सदी में हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राजनीति में संघ का जो महत्व आज है उसका श्रेय गुरु जी को दिया जाना चाहिए, जिनके अथक प्रयासों के कारण ही संघ देश के कोने कोने तक पहुंच पाया। 19 फरवरी 2006 को रामटेक में जन्मे गोलवलकर की निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। 1929 में अपने एक साथी बाबूराव तेलंग को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की एक झलक देते हुए लिखा था कि वो एक गुस्सैल पिता की एक रुष्ट संतान है और उनकी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। वो तेलंग को ये भी बताते हैं कि किस तरह बीमारी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और किस तरह नागपुर दंगों के दौरान उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में एमएस गोलवलकर द आरएसएस एंड इंडिया पुस्तक लिखने वाले हैदराबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ज्योतिर्मय शर्मा बताते हैं,
नागपुर में हाथों का इस्तेमाल किया तो लोगों ने किया। अगर आप कुछ आधारा से सहमत हैं तो आप कहेंगे कि उस रेवोल्यूशनरी था, नॉन गांधीयन रेवोल्यूशनरी था, और अगर विचारधारा से सहमत नहीं है तो उसको आप राइटर कहेंगे। तो इन सब चीजों में अब सावरकर ने तो 7 या 9 साल की उम्र में मस्जिद के ऊपर पत्थर मारे थे अपने मित्रों के साथ मिलके। मेरे हिसाब से इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस जो है, इनका महत्व जो है थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा जो महत्व है गोलवलकर जहाँ तक है वो ये है कि उन्होंने राजनीति को निम्न समझा। वो महाभारत का एक श्लोक है, वो बार बार रिपीट करते थे, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग में रिपीट करते थे और उनके बाद भी सरसंघचालक जो हैं भागवत जी तक वो उसको रिपीट करते थे कि जो राजनीति है, जो गवर्नेंस है, वो वैश्याओं का धर्म है, रणनीति वैरांगना। उनका सिग्निफिकेंस ये है कि उन्होंने आरएसएस को एक संन्यास आश्रम की छाया में ढाला और उसको पनपने दिया।
कहा जाता है कि आरएसएस के सभी सर संचालकों में आरएसएस पर सदाशिव गोलवलकर की छाप सबसे अधिक है। संघ के हलकों में उन्हें अभी तक स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक विरासत के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और मशहूर पत्रकार राम बहादुर राय को गोलवलकर से मिलने का कई बार मौका मिला था।
एक बार मैंने उनको पत्र भी लिखा था एक प्रोटेस्ट में, तो वो गुरुजी पत्रों के जवाब देते थे। वो मान लीजिए दौरे पर होते थे जिसको संघ में प्रवास कहते हैं, तो लौट करके आने के बाद वो जो पहला काम करते थे नागपुर में, नागपुर महल में संघ का वो जो कार्यालय था तो उसमें सीढ़ियाँ चढ़ करके और अलग से सर संघ चालक का एक कमरा होता था जहाँ वो रहते थे। और डॉक्टर आबाजी थत्ते एक पेशे से डॉक्टर थे लेकिन संघ के प्रचारक हो गए थे, तो वो उनके निजी सचिव के रूप में आजीवन रहे। तो मैंने उनको दूर नज़दीक से कई बार देखा है। पहली बार मैंने उनको 1968 में देखा और उस समय देखा जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई थी। दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगल सराय स्टेशन पर रखा हुआ था। वो इलाहाबाद से और सीधे वहां गए जहां दीनदयाल उपाध्याय का पोस्टमार्टम हुआ था। बाकी लोग रोग आ रहे थे, गुरुजी अविचलित थे।
गुरु गोलवलकर के कार्यकाल का सबसे विवादित फैसला था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संघ को पूरी तरह से अलग थलग रखना। उनके इस फैसले को लेकर आरएसएस की अब तक आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसा करने के उनके अपने कारण थे। मशहूर किताब आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलंजन मुखोपाध्याय कहते हैं,
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हेडगेवार जब 1930-31 में गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बतौर संगठन के नहीं पार्टिसिपेट किए थे। उन्होंने अनुमति दी थी अपने काडर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में शामिल होने की, उन्होंने खुद तय किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस का जो कहते हैं कि उसके प्रति एंथुजियाज्म इतना था, उनको ये लगा कि अगर हम लोग इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम लोग टोटली इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पर्सनली भी एजिटेशन में शामिल हुआ था, लेकिन मेन सिविल डिसोबीडियंस में नहीं हुआ था बल्कि जंगल सत्याग्रह में हुआ था। लेकिन उसके ज्वाइन करने के पहले उन्होंने जो सरसंघ चालक की गद्दी थी वो दूसरे किसी अपने साथी को परांजपे जी थे, उनको नियुक्त करके सरसंघ चालक बना के फिर जाके वो कोर्ट अरेस्ट किए थे। तो गोलवालकर ने जो फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं ज्वाइन करेगा, वो उसी के कंसिस्टेंट था, क्योंकि एंटी कॉलोनियलिज्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन परसूट नहीं था। वो लोग बेसिकली चाहते थे कि हिंदू समाज को स्ट्रेंथन करें ताकि वो मुसलमानों का जो इतिहास में उनके परसेप्शन में कि हिंदुओं का जो अपमान हुआ उसका वो लोग बदला ले सकें। उनको लगता था कि अगर हम हिंदू कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है ये जियोपोडाइज होगा अगर हम लोग कॉलोनियल पावर्स के किसी कारण से हम उनको अपसेट करें जिसकी वजह से वो हम पे कोई सैंक्शंस लगा दें, तो हमारा जो एक्चुअल काम है कि हिंदू समाज को स्ट्रेंथन करना, मुसलमान समाज के खिलाफ खड़ा कर पाए हम हिंदुओं को, उसमें हमारी वीकनेस हो जाएगी।
आरएसएस के अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट आया जब गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गुरु गोलवलकर गिरफ्तार कर लिए गए। इस तथ्य ने भी आरएसएस को बहुत नुकसान पहुंचाया कि एक समय नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे।
गोडसे निकल चुके थे संघ से, पर कोशिश कर रहे थे कि सावरकर और संघ का एक जॉइंट वो हो जाए, क्योंकि मुश्किल ये थी कि सावरकर जो थे वो 30s के बाद ही वॉज रेडी टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदूज, और गोलवालकर का मत था कि सारा देश हिंदू है तो आप हिंदुओं की हिमायत कैसे कर सकते हैं एज अ सिंगल ग्रुप, कि पूरा देश ही हिंदू है, वहां जाके बात अटक जाती। और दूसरी बात ये थी कि सावरकर का मत था कि बिना राजनीति के कोई भी चीज संभव नहीं है, और आरएसएस का गोलवालकर जब तक थे तब तक मत रहा कि जो संघ के लोग जो हैं मेन स्ट्रीम लोग जो हैं वो अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे राजनीति में।
करीब 7 महीने बाद आरएसएस से प्रतिबंध हटाया गया और गोलवालकर ने संगठन के आधार को विस्तार देने का बीड़ा उठाया।
प्रतिबंध वाला समय सचमुच संघ के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, और उस समय संघ के विरोध में वातावरण ज़्यादा था। कांग्रेस और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यानी नेहरू के जो समर्थक थे वे ज़्यादातर मानते थे कि गांधी जी की हत्या जो है वो संघ के कारण हुई है। संघ का हाथ है नहीं है ये अलग विषय, इसलिए संघ के कार्यालयों पर हमले बहुत हुए। एक घटना गुरुजी से भी संबंधित है, जब वो गिरफ्तारी उनकी हुई है उससे पहले जहाँ वो रहते थे वहाँ भारी हमले का अंदेशा था। लोगों ने कहा कि आप ये स्थान छोड़ दीजिए, छिपने के लिए दूसरी जगह जाइए, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसी स्थान पर रहेंगे और हमारे जो लोग हमले करने आ रहे हैं वे हमारे लोग हैं, फिर भी अगर हमले करेंगे तो हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम भागेंगे भी नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। कुछ लोगों ने शायद ये कोशिश की तो हमले से पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। सरदार पटेल को भी समझ में आया कि नहीं, वो संघ का कोई जो भी जांच वगैरह हुई होगी तो संघ का कोई हाथ नहीं है, तो धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू को समझा करके 30 जनवरी 48 को हत्या हुई है, शायद 3 फरवरी को और जुलाई 49 में जा करके, तो ये जो पीरियड है वो संघ के लिए कठिन परीक्षा का समय था, जिसमें गुरु जी ने उसका बहुत साहसपूर्वक नेतृत्व किया।
गोलवलकर की सबसे बड़ी आलोचना हुई मुसलमानों के उनके जबरदस्त विरोध के कारण। मैंने ज्योतिर्मय शर्मा से पूछा कि आखिर गोलवलकर के मुस्लिम विरोध के पीछे मूल आधार क्या था।
एक तो वो हमसे अलग है, वही वो जो पुराना जो है कि उनके इस्लाम का जन्म जो है वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एंड दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। अब कोई पूछे कि भाई टाइटल डीड बताइए आप इस लैंड की, तो फिर आप वो आर्यन थियरी में चले जाएंगे कि आप भी यहाँ नहीं थे, यहाँ तो सिर्फ आदिवासी थे, आप तो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सावरकर का जो पितृभू मातृभू पुण्यभू वाला मामला है तो वही एक तरह से एप्लीकेबल है यहाँ भी। गोलवालकर भी उसको मानते थे। और जहाँ तक सवाल है, गोलवालकर तो जगह कहते भी हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा करे, मस्जिद बनाए, एज लॉन्ग एज दे एक्नॉलेज हिंदुइज्म एज द सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क, अपने आप को सिविलाइजेशनली हिंदू मान। तो एक जगह कहते भी हैं कि आप भले ही अपना फर्स्ट नेम जो है मुसलमान रख लें पर सरनेम हिंदू रखें, या फर्स्ट नेम हिंदू रख के सरनेम मुसलमान रखें।
इस बात के साक्ष्य हैं कि आजादी से पहले गोलवलकर ने बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा की योजना बनाने और भड़काने की कोशिश की थी। भारत के गृह सचिव रहे और बाद में युगोस्लाविया में भारत के राजदूत रहे राजेश्वर दयाल अपनी आत्मकथा ए लाइफ ऑफ अवर टाइम में लिखते हैं।
जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, पश्चिमी रेंज के अनुभवी और सक्षम उप पुलिस महानिरीक्षक बीबीएल जेटली बहुत गोपनीय ढंग से मेरे यहाँ स्टील के दो बड़े ट्रंक लाए। उसमें राज्य के पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के अकाट्य साक्ष्य थे। उन ट्रंकों में उस क्षेत्र के हर शहर और गांव के सटीक ब्लूप्रिंट थे, जिनमें मुस्लिम बस्तियों और उन तक पहुंचने के रास्तों को चिन्हित किया गया था। मैंने मुख्य आरोपी श्री गोलवलकर की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया, जो अभी भी उस क्षेत्र में थे, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने मामले को कैबिनेट के सामने रखने का फैसला किया। लेकिन इस बीच गोलवलकर को मुखबिरी कर दी गई और वो इलाके से गायब हो गए।
लेकिन वही गोलवलकर कश्मीर के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरदार पटेल के कहने पर महाराजा हरी सिंह से मिलने श्रीनगर जाते हैं। मशहूर पत्रकार संदीप बोमजाई लिखते हैं,
सरदार पटेल के कहने और राज्य के प्रधानमंत्री महरचंद महाजन के हस्तक्षेप के बाद गोलवलकर श्रीनगर गए और 18 अक्टूबर 1947 को उन्होंने महाराजा हरी सिंह से मुलाकात की। पंजाब के प्रांत प्रचारक माधवराज मुले ने लिखा है कि महाराजा ने गोलवलकर से कहा, मेरा राज्य पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर है। कश्मीर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते रावलपिंडी और सियालकोट से गुजरते हैं। मेरा हवाई अड्डा लाहौर है, मैं भारत से किस तरह संबंध रख सकता हूँ। गोलवलकर ने उनसे कहा, आप हिंदू राजा हैं, पाकिस्तान के साथ विलय के बाद आपकी हिंदू प्रजा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सही है कि आपका भारत के साथ कोई रेल, सड़क या हवाई संपर्क नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। आपके और जम्मू कश्मीर के हित में अच्छा यही होगा कि आप भारत के साथ अपने राज्य का विलय कर लें।
चीन के साथ युद्ध में आरएसएस ने नागरिक प्रशासन में जिस तरह की भूमिका निभाई, उससे नेहरू इतने प्रभावित हुए कि आरएसएस की एक टुकड़ी को पूरी यूनिफॉर्म और बैंड के साथ 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने दिया गया। 1965 के युद्ध में भी गोलवलकर उन चंद लोगों में से थे जिनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परामर्श किया था। अटल बिहारी वाजपेयी उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी उपस्थिति में कभी कुर्सी पर न बैठकर हमेशा जमीन पर बैठते थे। गोलवलकर के देहांत के बाद भाषण देते हुए वाजपेयी ने कहा था,
वे तो अपना श्राद्ध स्वयं करके चले गए, हमारे लिए मानो कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कुछ नहीं छोड़ा। हमारे लिए राष्ट्रभक्ति की एक महान धरोहर छोड़िए, समाज को संगठित, अनुशासित और शक्तिशाली बनाने का एक अधूरा कार्य छोड़ा है। भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का एक महान संकल्प छोड़ा है जीवन भर।
लेकिन गोलवलकर के आलोचक ऐसा नहीं मानते। लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा उन्हें नफरत का मसीहा कहते हैं। मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह को एक बार गुरु गोलवलकर से मिलने का मौका मिला था। खुशवंत सिंह लिखते हैं,
जब मैं गुरु गोलवलकर के घर पहुंचा तो बाहर से ही आभास मिला जैसे घर के अंदर पूजा हो रही हो। दरवाजे के बाहर करीने से चप्पलें लगी हुई थी, अंदर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही थी और रसोई से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी। एक छोटे कमरे में करीब एक दर्जन लोग सफेद बुर्राक कुर्ता और धोती पहने बैठे हुए थे। लग रहा था कि सभी लोग अभी अभी नहा के आए हों। उनमें से एक थे दुबले पतले गुरु गोलवलकर, करीब 65 की उम्र, ठुड्डी से लटकती हुई बेतरतीब सफेद दाढ़ी और कंधे पर गिरे हुए काले बाल। पहली नजर में वो मुझे हो ची मिन्ह के भारतीय संस्करण लगे। मैं जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुका, उन्होंने अपने कमजोर हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। चाय के प्याले के बाद मैंने उनसे पूछा, आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों हैं? गोलवलकर का जवाब था, मुसलमानों को सबसे पहले भूलना होगा कि उन्होंने भारत पर कभी राज किया था। दूसरे, उन्हें विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों को अपनी जन्मभूमि मानना बंद करना होगा और तीसरे, उन्हें भारत की मुख्यधारा से जुड़ना होगा।
गोलवलकर हालांकि जानकार व्यक्ति थे, लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि वो अखबार तक नहीं पढ़ते थे। संघ की विचारधारा का स्रोत सावरकर हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को विस्तार गोलवलकर ने ही दिया था।
गोलवलकर जो है एक तरह से उनका क्लोज्ड माइंड था। उनके दिमाग में जो कुछ कंक्लूजन्स आने थे, जो कुछ उनका जो थियरी थी, सोशल थियरी थी, उसके बारे में कंप्लीट फाइनलिटी आ गई थी बहुत उनके जवानी में। तो उसके बाद से उनको लगता था कि मुझे आगे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपने विचार को रिकंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि वास्तविकता ये भी, कोई भी अगर अच्छा आदमी इंटेलेक्चुअल परसूट में लगता है तो उसको एक चीज़ से हमेशा तड़पना चाहिए, वो है सेल्फ डाउट। क्या मैं जो कह रहा हूँ क्या यही फाइनल ट्रूथ है, या हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गोलवलकर के दिमाग में कभी ये नहीं आया था। जबकि उनके जो सक्सेसर थे बाला साहेब देवरस, उनमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि वो हमेशा अपने पोजीशंस को री एग्जामिन करते थे कि क्या मुझे इस पोजीशन से कुछ हटके चेंज करना है या आगे बढ़ना है।
दिलचस्प बात यह है कि संघ के इतिहास में इतना गरिमापूर्ण स्थान रखने वाले गोलवलकर और उनके उत्तराधिकारी बाला साहब देवरस एक वेवलेंथ पर नहीं थे और कई मुद्दों पर उनके विचार मिलते नहीं थे।
बाला साहब देवरस को लगा था कि शायद हेडगेवार उनको सरसंघचालक बनाएंगे। बोला भी जाता था कि ये असली सरसंघचालक हैं, गोलवलकर तो मेयर प्रॉक्सी उनके लिए गद्दी संभाले हुए हैं। तो गोलवलकर तो अक्सर टॉन्ट करते थे कि हम कहाँ के सरसंघचालक, असली सरसंघचालक तो ये हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय देवरस ने गोलवलकर को बहुत डायरेक्टली पूछा कि आप बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब के उत्तराधिकारी हैं, उनके सक्सेसर हैं, उनके हर कदम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे कि उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस के समय किया वो आप क्यों नहीं कर रहे? गोलवलकर हैड नो आंसर। 64 की बात है जितना मेरे को साल याद है, एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें दीनदयाल उपाध्याय को बाला साहेब देवरस, तब ये ऑलरेडी जनसंघ के पॉलिटिक्स को देखते थे संघ की तरफ से, उन्होंने कहा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय को, गोलवलकर नहीं होना देना चाहते थे। उसके पहले 50s में एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से करीब 6-7 साल बाला साहेब देवरस संघ छोड़ के चले गए थे। हुआ ये था कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जब अंडरग्राउंड रहे थे तो संघ को रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बहुत दिक्कतें हुई थी। बाला साहेब देवरस ने उस समय ओपन मार्केट में हुंडी में पैसा उठाया था। जब बैन हट गया तो जो उन लोगों से पैसा लिया था हुंडी के मार्केट के ऑपरेटर्स, उन्होंने कहा मेरे पैसे लौटाओ, तो बाला साहेब देवरस गुरुजी के पास गए और बोले कि मेरे को मदद करिए इनको पैसा लौटाने के लिए। तो गोलवलकर ने कहा कि आपने किसी से परमिशन लेके पैसा उठाया था, तो आपने खुद पर्सनली उठाया था तो पर्सनल डिसीजन था, अब आप खुद भरिए। तो देवरस के पास वो कैपेसिटी नहीं थी, तो इसलिए वो वापस गाँव चले गए। दोबारा से जाके उन्होंने खेती शुरू की और उस पैसे से उन्होंने उन लोन को जो उन्होंने आरएसएस के लिए उठाया था वो रीपे किया। तो जब फाइनली जब लौट के आए, जब उन लोगों ने कन्विंस किया उनको करीब 5-6 साल के बाद, तो बहुत बिटरनेस के साथ आए। वो बिटरनेस कभी व्यक्त नहीं हुआ, लेकिन इम्प्लिसिट उन दोनों के बीच में आखिर तक बना रहा।
इंदिरा गांधी गोलवलकर से कभी नहीं मिली। अपने पिता की तरह उन्होंने भी उनका विरोध किया, लेकिन उनकी मृत्यु पर उन्होंने कहा था, अपने व्यक्तित्व और विचारों की गहनता के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक खास जगह थी। हालांकि हम में से बहुत से लोग उनसे सहमत नहीं थे।
उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वह संघ को विवादों से बचा करके और निरंतर बनाए रखने में है। जिन तूफानों से संघ उन दिनों गुजरा है उसमें गुरु जी के अलावा दूसरा कोई नेतृत्व होता तो संघ टूट जाता। उसी तरह से 1947 के समय में भारत का विभाजन का वो समय है, उथल पुथल का है, मारकाट का है, तो उसमें संघ की भूमिका क्या हो, तो ये बचाव और राहत कार्य, इस पर गुरु जी का जोर है। कुछ लोग उग्रवादी भी थे, उस रास्ते पर गुरु जी ने संघ को जाने से रोका। अब दूसरा जो उसको कहेंगे, हिंदी में वो शब्द होगा अवसाद और अंग्रेजी में होगा डिप्रेशन। संघ के जीवन में डिप्रेशन का एक काल आया है जिसको कम लोग नोटिस करते हैं, वो 1952 है। संघ के बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि बहुत सारे राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में और जगहों पर जनसंघ जो है वो सरकार बनाएगा या मुख्य विपक्षी दल के रूप में होगा। लेकिन जब परिणाम आया तो पार्लियामेंट में 2 लोग जीत करके आए और इन जगहों पर कांग्रेस छाई रही, तो वो उन लोगों के लिए जो इस काल में मानते थे कि हमारा बहुत भविष्य उज्जवल है, उनके लिए वो डिप्रेशन का काल था। लेकिन गुरुजी इसमें सही साबित हुए। उन्होंने उन लोगों को ये समय समय पर बताया भी था कि ये जो बाढ़ जैसी स्थिति है उसको ऐसा मत समझो कि ये तुम्हारा संचित धन है। ये जो डिप्रेशन का जो काल आया 1952 का, उसमें कई बड़े लोगों ने चुनाव जीतने के लिए संघ के पास जो पैसा था वो लगा दिया। अब वो जब लगा दिया और कोई परिणाम नहीं आया तो आपस में अंदर ही सही आलोचना हुई। उस आलोचना के कारण से फिर बहुत सारे लोग संघ से अलग हुए और वो जो 5-7 साल का पीरियड है वो उस पीरियड में गुरुजी ही हैं जिन्होंने एकनिष्ठ होकर के संघ को चलाया। तब से लेकर के 1973 तक जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर गुरुजी की कुछ कहेंगे, संघ की निरंतरता को 73 तक बनाए रखना गुरुजी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।